Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो असंग है। अब जो है ये संकेत किया और जब वो ऊर्ध कर देता, इसलिए योगियों की जहां चर्चा आती है तो प्राणायाम आदि की चर्चा की गई, उस प्राणायाम के भेद बतलाए गए, कुंभक रेचक आदि और वहीं पर वस्त्रिका लंबिका आदि ये चर्चाएं की। योगी भी जो ज्ञान योगी होता है वो क्या करता है, लंबिका के द्वारा, लंबिका प्राणायाम के द्वारा वह भी उस को ऊपर ही वापस कर देता है, इसलिए वो भी क्या हो जाता है, तेजस्वी होता है। लेकिन ये कब करता है, उस योग की अवस्था। लेकिन वित्थान काल में फिर उसका जो है वो नीचे आने लगता और फिर व्यवहार में उसकी प्रक्रिया हो जाती, व्यवहारिक हो जाता। तो ये सब चर्चा की गई। तो भगवान शिव क्या है, उसको ऊर्ध गति देने वाले, ऊर्ध गति देते हैं और ऊर्ध गति देते हैं, इसलिए भगवान को जो है बोलते हो कि कितने समय तक बैठे रहे, तो बीते संबत सहस सतासी, है ना, ऐसे भगवान। तो उनके अंतर्गत ये सामर्थ्य है, अब विचार ये करना, ये गति हो। लेकिन जब वो नीचे आता है तो वायु के साथ में, और वायु के साथ में आकर के मूलाधार आदि उसे पहुंचता है और सारे शरीर को नियमित रूप से क्रिया करने की सामर्थ्य देता, ये नियम है। अब जो है ये नियम है, लेकिन ये नियम होते हुए भी नियम जो है किसके बल से हो रहा है, तो उसी शिव की बल से, और वह शिव सारा बल देते हुए भी कैसा है, का असंग भी है। तो ये वायु भी क्या है, वायु भी वैसे भी है माया का रूप ही, पार्वती को भी इसीलिए भय लगा, वो भी प्रकृति का प्रतीक। तो एक अंश को लेकर के, जैसे भगवान का एक अंश है नीला पड़ गया, लेकिन वह नीला होते हुए भी उनको विकृत नहीं कर सका, असंगता उनकी बनी रही। इसी प्रकार से समस्त संसार हमने कैसा कहा, तो शास्त्र में पढ़ते हो है अनरथ, क्या कहा, जो रित नहीं है, क्या कहते हो, संसार कैसा है, अनरत, जो रित नहीं है। लेकिन उसमें रितता कहां से आती है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी उसको लेकर के आती है कहां से, तो वो आत्म तत्व है, वो शिव तत्व है, ऐसा संकेत किया। और वो शिव तत्व है वो कैसा है, वो वस्तुतः सत्य है, वो कैसा है, वस्तुतः अपरिवर्तनीय है, और वायु जो है वो कैसा है, नियमत। लेकिन वो भी नियम उसका कब चलता है, तो उसी की सन्निधि को लेकर, उसकी सन्निधि के बगैर वो नियम नहीं चलता। तो ये सब व्यावहारिक, इसको मायिक जिसको कहते हो, तो उसके अंतर्गत व्यवहारिक और मायिक के अंतर्गत भी जो अमृतत्व दिखाई दे रहा है, जो चेतनत्व दिखाई दे रहा है, वो किसके बल पर है, तो रित सत्य के बल पर, इसलिए उसे रित सत्य कहा। अब जो उसकी वस्तु रूपता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब यहां पर हमको तो प्रत्यक्ष रूप से वायु हुई, प्राण क्रिया हो रही है, है नवज देखते हो तो कहते हां है, और नवज नहीं चल रही है, नहीं मालूम पड़ रही, तो कहते नहीं है, है ना, तो रित और रित दोनों का प्रयोग कर देते। तो अब उसे है ये सत्य, उसे कब कहते हो, उसकी सत्ता को स्वीकार कब करते हो, तो वायु को लेकर के, और वायु के अभाव में, वायु के नियम के अभाव में उसे अनर्थ सिद्ध कर देते। तो अब यहां पर जो है जितना भी ये कार्य है तो सब कैसा है, कहा माने अनर्थ होते हुए भी रित है, किसके बल पर है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो प्राण शक्ति दिखलाई दे रही, वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी किसके बल से करती है, तो उसी के बल से। इसलिए कुछ लोग गाते हैं ना, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, वायु आती जाती उसको लेकर के, तो उसी के साथ में ये मैं स्फुटित होता है, इसके बगैर मैं का प्रस्फुटन हो सकता नहीं। तो अब जो है सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जुआ बिन दंत है वैठ एकांत जमा कर आसन मूंद लिए दो कान इत्यादि करके संकेत वहां करते और अनहद नांद सुने या घट में है ये सब चर्चा उसकी करते हो। तो ये जो इस प्रकार से यहां पर संकेत ये किया गया कि भगवान शिव जो है वो सत्चित आनंद रूप से वो क्या है तो सत्य है, लेकिन उन्हीं की सत्यता को लेकर के उपाधि विशेष को लेकर के वायु को लेकर के जो नियम चल रहा है उस नियम को लेकर के भी सत्यता प्रतीत हो रही है, सत्ता प्रतीत हो रही तो वो भी सत्य है, लेकिन वो सत्य कैसा है? रित सत्य, व्यावहारिक सत्य है। और व्यावहारिक सत्य जो है कब तक रहता? तो उसी की सन्निधि काल तक रहता। जैसे निरुपाधिक जो है वह कैसा है? सत्य है। और सोपाधिक वही रित है। सीधा सा तात्पर्य समझ लो, तो सोपाधिक जो होकर के वो रित है और निरुपाधिक होकर के सत है। तो इसलिए यहां पर वायु को ही हम प्रत्यक्ष रूप से समझ रहे, इसलिए कह देते हैं ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी, ये चर्चा की है। लेकिन यथार्थता क्या है तो इसका संकेत किया गया। अब मृत्यु से सब लोग भयभीत होते, मृत्यु से क्या होता है? मृत्यु से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भयभीत है, लेकिन क्या भय करने से मृत्यु हमें छोड़ देगी? भय करने से मृत्यु किसी को छोड़ सकती नहीं। मृत्युर विभेसी किन तात, क्या तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे? कहा हां। तो कहा भय क्यों कर रहे हो, उस भय से क्या मृत्यु छोड़ देगी? एक नियम होता ना, भालू होता, भालू वो क्या करता है, जो उससे डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो फिर उसे वो ग्रहण नहीं करता, छोड़ देता। कहा ऐसे ही मृत्यु छोड़ दे? कहा मृत्यु ऐसे नहीं छोड़ती, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती। तो क्या करना चाहिए यदि मृत्यु से बचने का, फिर उपाय क्या है? तो कहने लगे मृत्यु यदि छोड़ती है तो किसको छोड़ती? तो शास्त्र कहता है अजात शत्रुम है ना, कहा मृत्यु जो अजात है, जिसका जन्म नहीं होता, ऐसे उसी से भयभीत होती, उसी को छोड़ती है। तो अजातम मृत्युम विमुंचती, अजात को ही मृत्यु जो है त्याग करती। इसलिए अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने जब मृत्यु रुके लेकर के सब मारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और दुखी हुआ अर्जुन, तो अर्जुन को उपदेश देना कहां से शुरू किया? कहा मृत्यु किसे नहीं छू सकती, तो यही कहा वेदा विनाशिनम है हिनम अज नित्यम इत्यादि करके कहा। अज है, अजता ही बता है, तो जो अजात है उसी को मृत्यु ग्रहण नहीं कर सकती। और यदि मृत्यु से बचना है तो क्या करना होगा, क्या उपाय है? तो है क्या होना होगा? कहा अजात जन्मनी, तुम भी अजात जन्म हो जाओ, और जब अजात जन्म वाले हो जाओगे तो अपने जन्म को अजातता में कर दो, तो कहा मृत्यु तुमको भी नहीं पकड़। इसलिए यहां पर भी वही संकेत किया गया, सत्यम ऋतम इत्यादि सब, और ये सब देवताओं से प्रार्थना करते हुए ऋषि की जो जिज्ञासा है वो केवल प्रार्थना उपासना मात्र नहीं, ये तो बल प्राप्त करना चाहता है, वो साधन चतुष्टय संपन्न है, उसकी जिज्ञासा क्या है? अजात पना, और वही जो है मृत्यु से उसे निवृत्त कर सकता, वहीं पर उसकी मृत्यु आदि की सब रहता हो सकती। तो ये जो चर्चा यहां पर की गई है, इसलिए संकेत किया गया कि वेदा विनाशिनम नित्यम ये नमजव्यम, वहां संकेत कर दिया। और आगे जो भगवान ने कहा ऊर्द मूल मदा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छन्नांश्य है प्रणानी यस्तम वेद स वेद, वहां इतने अंश को लो यस्तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वही वेदवेत्ता, ये संकेत किया। लेकिन बताया किसको? संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष की चर्चा कहा, उसको जान लेता है वो उसे जान लेता, लेकिन कैसे जान लेता? तो वहां संकेत कर दिया ऊर्धता की चर्चा की, मूल क्या है उसका, कारण क्या है, तो कहा ऊद सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट, और उससे ही यह सारा का सारा वृक्ष है। और वृक्ष में क्या है, नियम होते हैं। क्या नियम होता है वृक्ष में भी, क्या होता है नियम होता है। वृक्ष जो है बीज से अंकुरित होता है, काढ़ से अंकुरित होता है, उसमें तना शाखा प्रशाखा पत्ते, और पत्तों से पुष्प, और पुष्पों से प्रक्रम से फल, और फल किसका कारण है? ये तो क्रम से चल गए, फल किसका कारण? तो फल है दुख का कारण। फल किसका कारण? दुख का ही कारण। क्योंकि फल होगा तो आप उसका स्वाद लोगे, लेकिन फिर तृप्त हो जाओगे, फिर तृप्ति चाहिए, तो पुनः उससे बीज से फिर वृक्ष बनेगा, फिर ये प्रसंखला जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब पत्ते क्या करते हैं, तो उनको बतला दिया, वो धर्म को फायदा करते, उससे फल आदि मिलता, तो ये सारी बातें भी हैं। अब यहां संकेत करते हैं कि यदि ऊर्ध को जान लिया तो क्या होता है, तो कहा वही वास्तव में वेदवित है, और वेदवित है वो, तो उसके लिए क्या कह दिया, केवल वृक्ष रूप से जानना नहीं, किंतु वृक्ष को कारण रूप से जानना। वृक्ष की कारणता क्या है, वृक्ष का मूल क्या है, वृक्ष में जो सत्य है वो क्या है, और रित है वो क्या है। अन्य सब तो रित है, लेकिन वृक्ष का जो मूल है वही क्या है, सत्य। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही क्या किया गया, हाँ वो तो कहा ही, वो तो उसकी सृष्टि की प्रक्रिया को बतलाया, लेकिन मूल की चर्चा करते हुए क्या कहा, प्रथम स्कंद के पहले दूसरे श्लोक में ही संभवतः आता है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सता वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रयो न मूलनम। तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला कौन है, तो क्या संकेत किया, वास्तव वस्तु, जो वास्तव है, जिसमें कभी भी परिवर्तन जिस वस्तु में नहीं होता है, ऐसी वो है, वही क्या है, शिवदम, सम करने वाली। इसलिए नाम ही रख दिया सम करोति शिव संकर, ऐसा संकेत कर दिया, तो वही समन कर सकता है, तो वो शिवदम, वही शिवत्व को दे सकता है, कल्याण को दे सकता है, वो वस्तु ऐसी है। लेकिन उसे प्राप्त कैसे करोगे, तब तो उसके लिए उपायों की भी चर्चा कर दी, क्या कर दी, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणा सताम, जो सज्जन पुरुष हैं, जो साध पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो अन्वेषण कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, का धर्म में से भी अच्छी तरह से खींच लेते हैं, उज्झित निकाल देते, तो धर्म के नियम को ही उज्झित कर देते। धर्म का नियम क्या है, तो पत्ते क्या है, धर्म के प्रतीक, और धर्म से क्या बनेगा, फल मिलेगा दृष्टदृष्ट होकर को, तो वहां तो दुख ही रहेगा, लेकिन ऐसे उसको भी जिसने जो है क्या है, उज्झित कर दिया, खींच लिया, निकाल लिया, और निर्मत्सराणाम सारे मत्सर जिसके हृदय से निकल गई, ऐसा जो सज्जन पुरुष है, ऐसा जो जिज्ञासु है, वही क्या करता, वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, कहीं अन्यत्र नहीं, अत्रही, जो शिव को शिवत्व को देने वाली, कल्याण को देने वाली है, ऐसी उस वस्तु को वो जान लेता है, और उसे जान लेता है तो क्या है वो वस्तु करती, तीनों तापों को ही समाप्त कर देती, तो वहां मृत्यु आदि कहां रही, इन सबकी निवृत्ति उसकी हो जाती, ऐसा संकेत वहां भी किया। इसलिए यहां भी कहते हैं कि जानना किसको है, तो कहने लगे अजातम, जो अजात है, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, और जन्म किसका नहीं हुआ, तो एकमात्र वस्तु है, ऐसी उस वस्तु के जानने की ऋषि की जिज्ञासा है। इसलिए इन सब से प्रार्थना करते हुए, अर्थात इन गुणों से, इन वनों से संपन्न होते हुए, और फिर ऋषि जिज्ञासा संकेत करता है कि व्यावहारिक सत्य क्यों, नियम ये है, लाइबनीज और ह्यूम की पाश्चात्य दार्शनिक हुए, उनकी चर्चा हुई। लाइबनीज तो है बहुत को मानने वाला, अनेकत्व को मानने वाला, बहुत चिदड़ुवादी है, और ह्यूम जो है वो अद्वैतवादी। ह्यूम ने कहा कि मैं नहीं जानता मेरे अलावा संसार में कोई है, लेकिन उसने दर्शन ग्रंथ लिखा। लाइबनीज ने प्रश्न किया, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे अलावा कोई है, तो जब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो ये ग्रंथ किसके लिए, फिर इस ग्रंथ का लेखन कैसे, तब उसने वहां संकेत किया जैसे आपके पंचदशीकार ने लिखा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर कहां होता, द्वैत भाषया, और पहले द्वैत की सिद्धि तब अद्वैत की सिद्धि, द्वैत की सिद्धि, अद्वैत तो सिद्ध ही है लेकिन उसे सिद्ध नहीं करा, लेकिन द्वैत सिद्ध होगा तो द्वैत की सिद्धि करके जब उसका निवारण होता तभी अद्वैत की सिद्धि, तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से वहां पर भी उसने चर्चा की। तो वैसे ही यहां पर जब तक इस व्यवहारिक जगत में नहीं आते हैं तब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं, और व्यवहारिक जगत जो है या मायिक जगत जो है उसमें क्या है, रितता है। वो रितता भी किसको लेकर के है, वो नियमता है, वो किसको लेकर के है, तो उसी को लेकर। लेकिन वो सारी की सारी रितता होने पर भी, नियमता होने पर भी, वो सर्वथा भगवान शिव की जैसे चर्चा की वो असंग रूप रहते हैं, वैसे ही वो सारे धर्मों से असंग रहने वाला है। ऐसे उस तत्व को ऋषि जानना चाहता है, इसलिए वह यह संकेत करता है कि वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मवासी है, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूं, और जो है तुम्ही ब्रह्म हो, और कहने लगे तुम्ही ऋत हो, तुम्ही सत्य हो, ये सब चर्चा की। तो इस प्रकार से उसे ऋत सत्य इत्यादि कहके, और वास्तविकता ये है, गीता में आपने पढ़ा सद असत्या अहम अर्जुन, क्या कहा, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, इसका क्या मतलब, मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं हूं, इसका मतलब है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य भी सापेक्षिक है। सत्य शब्द का प्रयोग कब होगा, असत्य को लेकर के होगा, असत्य का प्रयोग सत्य को लेकर के, इस सापेक्ष शब्द, इंद्रियन को द्वंद्व कहा, इसलिए कहा निर्माण मोहा है, द्वंद्वैर्मोक्ता, ये सब चर्चा की। तो ये सारी की सारी भगवान कहते हैं कि सत और असत जो भी सब क्या है, व्यवहार में ही तो होंगे, ये सब व्यवहारिकता है, मायक है, और ये जो सब है वो उनका अधिष्ठान कौन है, तो भगवान ने क्या कहा, अहम। तो भगवान मृत्यु नहीं है, भगवान क्या है, भगवान तो जो है सो है, लेकिन यहां संकेत कर दिया गया कि ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वाभाव, उसके बगैर कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, जब नहीं है तो कौन जानेगा, कौन जनाएगा, लेकिन फिर भी कहने लगे कि उसी में ये सारा आरोपण है, वही सबका अधिष्ठान है, और उन आरोपणों का जब हम जो है आरोपण करते हैं, गर्मी पड़ती है, पसीना आता है, हैं? शरीर बदबू देने लगता है, तो क्या करते हैं, उपाय करते, क्या उपाय करते हो, नाइसियल पाउडर लगाते हो, और नाइसियल पाउडर लगाते हो लेकिन उसको कब तक लगाए रहते हो, यदि उसे लगाए रहो कहो उसने तो सुख दिया ऐसे नहीं हटाएंगे, तो क्या करेगा, वो और भी दुख देने लगेगा, ठीक, फिर क्या करते हो, उसका भी आप पहले उसे धारण करते हो, आरोप करते हो, फिर उसका भी निवारण कर, और निवारण कर देते हो तो आप ही आप बचते हो, है ना। ऐसे ही यहां पर ये माया ज्ञान आदि जो भी जो है सत्य असत्य आदि सबका आरोपण करके, और फिर इनका जब निराकरण कर दिया जाता है तब जो अवशेष तया शेष बचता है वही कौन है, तो उसी की तरफ भगवान संकेत करते कि वो मैं। हम पढ़ते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां भी हमारा अहम क्या है, अहम में ही तो सारे धर्म है, लेकिन जब धर्मों का ही परित्याग कर दिया तो जो जिसमें धर्म रहेंगे वो कहां से रह जाएगा, और वो नहीं रहेगा तो तब जो सत्ता बचती है वही मूल सत्ता। इसलिए हमारा जो अहम है यह भी, इसका भी जो आलंबन है वही जो है क्या है, वास्तव में शिव रूप है, और वही है अजात। ऐसे अजात को जानने की ऋषि की इच्छा है, इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि इसको जानने के लिए भी वो जो ऋत सत्य है उसका जब तक सहारा नहीं लेंगे तब तक उसे जाना जा सकता नहीं। इसलिए कहा कि वायु तुम ही जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही जो है ऋत हो, तुम ही जो है सत्य ब्रह्म हो, और ये सब कहते हुए फिर संकेत करते हैं जिस व्यापक शक्ति से, जिस सोम शक्ति को लेकर के चर्चा की थी उसके लिए चर्चा कर दी कि वही क्या करो, तद वक्तारम अवतु है महाम अवतु, मेरी भी रक्षा कर और वक्ता की भी रक्षा, अर्थात वगैरह इसके जो है विश्लेषण होगा कैसे, वगैरह इसके अनुसंधान होगा कैसे, जब तक संशय नहीं होगा और फिर संशय जब तक होगा नहीं तो मथानी नहीं चलेगी, और मथानी नहीं चलेगी तो रस्सी के बगैर मथानी नहीं चलती, और मथानी नहीं चलेगी तो दही टूटेगा नहीं, और दही टूटेगा नहीं तो मक्खन भी निकलेगा। ये सब प्रक्रिया है। इसी प्रकार से प्रश्न होना, संशय होना, संदेह होना, और फिर उन संदेहों का जो है क्या करना, समाधान होना, और फिर समाधान होते हुए जब समाधान और संदेह से भी क्या निकला, का तात्पर्य निकला, और जो तात्पर्य निकला फिर उसको भी संकेत आगे तुलसीदास ने कह दिया, बढ़िया पवित्र मक्खन मिल गया। लेकिन वो कहा मक्खन भी मिल गया, लेकिन ये मक्खन में ही रह गए तो अभी क्या है, तो सड़ांद आ जाएगी। तो क्या करना, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुभा शुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल। तो उसमें जो आसक्ति आदि छाछ आदि का अंश होता है वो भी जल जाता है, तो वो योग अग्नि। और वो योग अग्नि क्या है, तो आचार्य शंकर की दृष्टि में देखोगे, उपनिषद की दृष्टि में देखोगे तो वहां पर भी उन्होंने यहां सर्वधर्मान प्रत्यज्य की बात कह दी। वहां उन्होंने कहा अप्रोच्छानुभूति के अंतर्गत निराकार तया वृत्तया, पहले क्या करो, जो नाना प्रकार की वृत्तियां हैं उनको पहले हटाओ। कहा उनको हटा देंगे तो शून्य बाद में चले जाएंगे, शून्य हो जाए, कुछ नहीं रहा तो हमारी सत्ता ही नहीं रही, हम लोग घबरा जाते। कहने लगे नहीं नहीं, फिर क्या करो, कहा ब्रह्माकार तया पुनः, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीवो ब्रह्म विना परा, इसका आधान करो। कहने लगे तो ये भी तो एक अहंकार हो गया। तो फिर कहने लगे वृत्ति विस्मरणम सम्यक, अब इस वृत्ति का भी त्याग, परिपाक होने, और जब त्याग हो गया तब क्या बचेगा, तो कहा समाधिर ज्ञान संगिक, तब ये ज्ञान स्वरूप जो है, प्रकाशक स्वरूप है, वही केवल शेष बचेगा, और वही है वास्तव में समाधि, ऐसा संकेत कर दिया। तो ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर के ही वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऋत को ही स्वीकार करना पड़ेगा, नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, हमारे जन्म मरण की जो है रहता भी नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर ऋषि जो है इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि वायो तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और जो है मैंने तुम क्या हो, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, तुम ही ऋत हो, तुम ही सत्य हो, और जब तक हमारी श्वास चल रही है और मैं का स्फुरण हो रहा है तभी तक हम सत्य और असत्य का विश्लेषण कर पाते, और ये न हो तो सुसुप्ति अवस्था उदाहरण है इसका। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या सत्य है क्या असत्य है ये नहीं, लेकिन उसके द्वारा ये नहीं कि सत्ता समाप्त हो गई, सुसुप्ति में भी तो तुम्हारी सत्ता है, आनंद का अनुभव करती, लेकिन वो भी अज्ञान करता है, मायक है। तो इसी प्रकार से जहां पर वो अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, ऐसी जो स्थिति है वही है अजात, और उस अजातता की प्राप्ति के लिए ही सारा प्रयास होता, और रोज प्रयास में जो सफल हो जाता है उसका फिर जन्म ही नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती, और जन्म मृत्यु नहीं होती है तो न तो बाल्या वृद्धा और एवा आदि अवस्थाएं आती हैं, न उसमें कोई आमय आते हैं, सारे दुखों से वो रहत हो जाता है। ऐसा यहां इस उपनिषद का तात्पर्य है, उसी को लेकर के यहां चर्चा की जा रही, अब आगे चर्चा कल करेंगे। ओम।